सामूहिक तनाव की उत्पत्ति तथा विकास। सामूहिक तनाव के संबंध में जब हम विचार करते हैं कि तो पाते हैं कि इसकी जड़ में तीन तरह की समस्याएं रहती हैं। सामूहिक तनाव के संबंध में जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि इसकी जड़ में तीन तरह की समस्याएं रहती हैं। पहला मनोवैज्ञानिक, दूसरा सामाजिक तथा सांस्कृतिक, तीसरा आर्थिक। वास्तव में ये सामूहिक तनाव के कारक हैं। इन्हीं कारकों के कारण समूह में सामाजिक दूरी बढ़ती है। जब दो समूहों में सामाजिक दूरी अधिक बढ़ जाती है तो इन समूहों में तनाव और संघर्ष की स्थिति आ जाती है। जिन समूहों में सामाजिक दूरी कम होती है उनमें पारस्परिक संबंध घनिष्ठ होते हैं तथा उनके सदस्यों का आपस में मिलना जुलना भी अधिक होता है। हमारे समाज में सामाजिक संबंध जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, भाषा के आधार पर विकसित होता है। उच्च स्वर्ण अछूतों को हे दृष्टि से देखते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊंच नीच का भेद समाज की दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की भावना से पूर्वाग्रहों का कम जन्म होता है। वास्तव में सामाजिक तनाव को पूर्वाग्रह एवं रूढ़ियुक्तियाँ बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। पूर्वाग्रह एवं रूढ़ियुक्तियों के संबंध में पिछले अध्याय में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यक्ति का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस समूह का सदस्य है। प्रत्येक समूह के अपने मानक होते हैं, उनकी रुचि होती है, रीति रिवाज होते हैं और व्यक्ति के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में तो सभी समुदाय, समूह और वर्ग के लोग किसी भी प्रकार से व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो समाज जितना ही अधिक रूढ़िवाद होगा, उसके सदस्यों में अपने समूह के प्रति अनुकूल तथा अन्य समूहों के प्रति प्रतिकूल धारणा का विकास होगा। प्रतिकूल धारणा के अंतर्गत निषेधात्मक अभिवृत्ति, घृणा, देश इत्यादि की अधिकता दिखाई पड़ती है। भारतवर्ष में सामूहिक तनाव। भारतवर्ष के लिए यह कहावत अक्सर कही जाती है, अनेकता में एकता। इसका तात्पर्य यह है कि इस देश में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। इस देश में विभिन्न जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले तथा विभिन्न वर्गों तथा संप्रदायों के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी इन विभिन्न समूहों में तनाव भी दिखाई पड़ता है। हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच तनाव अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है। अब आगे हम उन क्षेत्रों का वर्णन करेंगे जो सामूहिक तनाव उत्पन्न करते हैं। पहला, जाति तनाव। हमारे देश में जाति व्यवस्था बहुत दिनों से चली आ रही है। वैसे इसका आरंभ वर्ण व्यवस्था के रूप में हुआ था। यह व्यवस्था समूह में कार्य को बंटवारा था। बाद में आगे चलकर जिसे जो काम दिया गया था उसमें उसे विशिष्टता प्राप्त हो गई। उन घरों के बच्चे भी बचपन से ही इस कार्य को देखते आते हैं। इस प्रकार उनमें उस कार्य के प्रति रुचि के साथ साथ विशिष्ट योग्यता भी विकसित हो जाती है। इस प्रकार जब कोई कार्य एक ही परिवार द्वारा कई पीढ़ियों तक किया जाता रहा तो उन लोगों की पहचान उसी कार्य से होने लगी। जैसे यदि कोई परिवार कपड़ा धोने का कार्य करने लगा तो वह धोबी कहलाया। जो लोग पूजा पाठ करने में लगे तो वह ब्राह्मण कहलाए। शासन व्यवस्था करने वाले क्षत्रिय कहलाने लगे। वास्तव में शुरू की वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। शुरू के वर्ण व्यवस्था में कार्यों का बंटवारा किया गया था। यह एक सामाजिक व्यवस्था थी, लेकिन जब यह जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई तो इन कार्यों का समाज में अलग अलग महत्व प्रदान हो गया। उदाहरण के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय अपने को ऊंचे समझने लगे और वैश्य तथा शूद्रों को हीन दृष्टि से देखने लगे। इस प्रकार विभिन्न जातियों में सामाजिक दूरी बढ़ने लगी। इस सामाजिक दूरी के ही कारण विभिन्न जातियों के बीच तनाव दिखाई पड़ता है। विभिन्न जातियों के लोगों में अलग अलग रीति रिवाज, विचार, मूल्य एवं अभिवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। विवाह, खान पान आदि में भी विभिन्न जातियों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। विभिन्न जातियों के लोगों में विभिन्नता होती है, यह बात निश्चित रूप से कहना कठिन है। यदि कोई अंतर दिखाई पड़ता भी है तो उसका कारण जाति न होकर उसकी सामाजिक आर्थिक दशा होती है, जिसके कारण उसकी आदतों और अभिवृत्तियों में अंतर दिखाई पड़ता है। वास्तव में व्यक्तियों तथा जातियों में अंतर वंशागत होता है। जिस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति का विकास होगा, व्यक्ति का निर्माण भी उसी प्रकार का होगा। शहरों की अपेक्षा गांवों में जातिगत चेतना अधिक पाई जाती है। शहर में तो यह देखा जाता है कि होटल में एक ही गिलास में सभी जातियों के लोग चाय पीते हैं। कोई यह नहीं पता लगता कि अमुक व्यक्ति किस जाति का है, लेकिन गांवों में चूंकि जमींदारी प्रथा थी, अंततः वहां पर अलग अलग जाति के अलग अलग समूहों में बसे पाए जाते हैं। जातिगत तनाव का मूल कारण यह है कि प्रत्येक जाति के लोग खास तौर पर उच्च वर्ग के लोगों में यह भावना देखी जाती है कि वे अपने को श्रेष्ठ तथा निम्न वर्ग के लोगों को हीन भावना से देखते हैं। यद्यपि कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतवर्ष के संविधान में यह साफ लिखा है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग और भाषा तथा जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, लेकिन वास्तविकता में ये आज भी महत्वपूर्ण तत्व के रूप में समाज में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जाति भेद तथा छुआछूत की भावना आज भी देखी जा सकती है। जातिगत आधार पर स्वयं और पर समूहों का निर्माण होता है। ऐसा देखा गया है कि स्वयं समूह के सदस्यों के प्रति लोग अच्छी भावना रखते हैं, पर समूह के प्रति घृणा और द्वेष की भावना विकसित कर लेते हैं। इसी प्रकार की भावना के कारण ही जातिगत तनाव उत्पन्न होता है। आजकल आधुनिक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से जातिगत भावना में कमी लाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए मनोरंजन के स्थानों, बाजार एवं शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों में इस प्रकार का भेद भाव समाप्त हो रहा है। ऐसी आशा की जा रही है कि जैसे जैसे आधुनिकता एवं औद्योगिकरण का विकास होगा, लोग शिक्षित होंगे, जातिगत भावना अपने आप को कम होती जाएगी और समाज एक बहुत गहरी सामाजिक बुराइयों से मुक्त हो जाएगा। वैसे यदि गहराई से देखें तो इस भावना की वृद्धि करने में राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा हाथ है। वे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस भावना को उभारते हैं और वोट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। टिकटों का बंटवारा भी जाति के आधार पर किया जाता है। संप्रदायवाद, जब दो संप्रदायों के बीच तनाव दिखाई पड़ता है तो हम उसे सांप्रदायिक तनाव कहते हैं। भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया के और भी कई देशों में इस प्रकार की समस्या विद्यमान है। अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका में श्वेत और अश्वेत तथा यहूदियों और अरबों के बीच तनाव पाया जाता है। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव और उसके फलस्वरूप दंगे कोई नई नहीं है। स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के समय तथा उसके बाद भी जबरदस्त तनाव दिखाई पड़ता है। वास्तव में इस देश में सांप्रदायिकता अंग्रेजों की देन है। उन लोगों ने सोचा कि यदि भारत के सभी हिंदू और मुसलमान मिलकर उनके खिलाफ बगावत करेंगे तो वे अधिक शक्तिशाली सिद्ध होंगे, अतः उनकी एकता को तोड़ना अधिक आवश्यक समझा गया। मुसलमानों को यह समझाया गया कि आप लोग इस देश के शासक थे और अब यदि स्वतंत्रता मिलती है तो बहुसंख्यक हिंदुओं का शासन हो जाएगा और वे आप लोगों को सताएंगे। इसलिए सन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के मंच में द्विराष्ट्र सिद्धांत की घोषणा की तथा पाकिस्तान की मांग करने लगे। विभाजन के समय इतना भीषण नरसंहार हुआ जिसका वर्णन रंगटे खड़े कर देने वाला था। ऐसी आशा की जाती थी कि स्वतंत्रता के समय बाद जब दो देश बन जाएगा तो सांप्रदायिकता की कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी दंगे होते रहते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता तनाव के ऐतिहासिक कारण हैं। मुसलमानों ने कई पीढ़ियों तक इस देश पर शासन किया और अब भी वे दूसरों की तरह सामान्य नागरिक हैं। दूसरी तरफ हिंदू यह सोचता है कि मुसलमानों ने उन पर अत्याचार किए हैं, उनके मंदिरों को तोड़वाया है और जब पाकिस्तान बन गया तो उन्हें इस देश में नहीं रहना चाहिए। दोनों संप्रदायों के बीच अविश्वास, द्वेष, घृणा की भावना के ही कारण सांप्रदायिक दंगे होते हैं। दोनों समूहों के बीच सामाजिक दूरी बढ़ाने में राजनीतिज्ञों का भी बहुत योगदान है। वे वोट प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक भावना को भड़काते हैं। इस प्रकार सांप्रदायिकता की भावना का संबंध व्यक्ति की अभिवृत्तियों से ही है। उनमें पाई जाने वाली पूर्वाग्रह तथा रूढ़ियुक्तियों ही पूर्ण रूप से सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार है। क्षेत्रवाद। पिछले कुछ वर्षों में देश में क्षेत्रवाद की भावना अधिक दिखाई पड़ रही है। इस बात की पुष्टि विभिन्न राज्यों के क्षेत्र दलों के शासन में आने से होती है, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, तमिलनाडु में अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, असम में असम गण संग्राम परिषद की सरकारें सत्ता में आती रहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष बाद भारत के दक्षिण राज्यों में यह भावना पनप रही थी कि उत्तर भारत के लोग उन पर शासन कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के विभाजन, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात का अलग होना, पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का अलग होना, असम से नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों का अलग होना क्षेत्रवाद की पुष्टि करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। क्षेत्रवाद की जड़ों में विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह विद्यमान रहते हैं। यह एक प्रकार की विघटनकारी प्रवृत्ति है जो हमारी राष्ट्रीय एकता तथा उन्नति के लिए घातक है। क्षेत्रवाद के आधार पर देश का विभाजन तथा बंटवारा अनुचित है और इस भावना से वो समुन्नत नष्ट करने की आवश्यकता है। भाषावाद। भाषावाद। भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 14 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है।